कार्तिकेय अनुप्रेक्षा लेक्चर नंबर 130 ओम नमः सिद्धे
तिलकं देवं वंदित्वा त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यं वक्षे अनुप्रेक्षाः
भविक जनानन्द जननी। यह कार्तिकेय स्वामी द्वारा लिखित कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, उसमें अभी तक हम लोक भावना पढ़ चुके हैं, यानी दसवें नंबर की लोक भावना जो है वो पढ़ चुके हैं। अभी हम इसके आगे बोधि दुर्लभ भावना को पढ़ रहे हैं। ये पढ़ते हुए हम गाथा नंबर 285 को देख लिए हैं और उसके अर्थ और भावार्थ को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात ये चल रही है कि बोधि यानी ज्ञान, किसका ज्ञान? तो स्व का ज्ञान, वह पाना महादुर्लभ है। एक जगह कहते कि तू तो ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से लबालब भरा हुआ है, और यहाँ कहते कि बोधि दुर्लभ भावना। भाई यहाँ तो कह रहे कि ज्ञान से जो तू परिपूर्ण है यह तो स्वभाव से है, पर्याय में अभी तेरे बहुत गड़बड़ी है। तू अपने स्वरूप को न जानते हुए पर रूप ही स्वयं को मान रहा है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ तो मुख्य बात ये बताई थी कि दुर्लभता कैसी है, किसकी? स्व को समझने की, स्व को जानने की दुर्लभता क्यों और कैसे हो रही है, ये बात बताते हुए कहते हैं कि अनादि काल से इस जीव ने नित्य निगोद में ही टाइम पास किया है अपनी भाषा, और वहां से निकलकर अन्य एकेंद्रिय में भी अनंत काल गवाया है, और ऐसे एकेंद्रिय पर्याय में से छूटकर दो इंद्रिय पर्याय मिलना भी बहुत दुर्लभ है। तो अभी आपको पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए क्या करना है, कौन सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा? अभी हाँ बोलो सुशीला बेन। प्रश्न समझ में आया? अभी संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ, कैसे भाव करने चाहिए? शांति राखो मोटा भाई, ये हमारा क्लास है, तुम्हारा नहीं। हाँ बोलो। हाँ शुभ भाव। हाँ आप क्या कहते हैं? अशुद्ध भाव, शुभ भाव। आप क्या कहती बहन? हाँ जोया एना बाजू में बैठा ने एटले। अरे अभी तो कौन सा पुरुषार्थ करने का रह गया है, अभी तो मनुष्य है कि नहीं, क्या पायजामा है? अरे अभी हम स्वयं मनुष्य पर्याय में है ना बहन, अभी कैसा पुरुषार्थ? अभी तो हमें स्वरूप को समझने का पुरुषार्थ करना है। पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं, ऑलरेडी हम है। अभी आप अब्जोपति हो गए तो अब्जोपति मिलाने के लिए क्या करने का? अरे कुछ नहीं है, उसको संभालने का है। वैसे जैसा मैं ज्ञान स्वभावी हूँ उसको जानने की, अभी उसको समझने की, मानने की, उसी में एकाग्रता करने की अभी गरज है बस। अब यहाँ इसीलिए कहते कि बोधि दुर्लभ भावना जो है, तो इसमें कहे के त्रस पर्याय जो किसमें से कि एक इंद्रिय पर्याय में से त्रस पर्याय प्राप्त होना भी दुर्लभ है। हम पेज नंबर 2 पर आए हैं।
देखो अभी हमने गाथा कल पढ़ी थी।
हाँ जी,
पहली गाथा में यानी 284 में देखा था कि अनंत काल निकिते गोद में बिताने के पश्चात पृथ्वी काय, अन्य चार जो है ना अप काय, वायु काय, तेज काय, वो पर्याय प्राप्त होना भी अत्यंत दुर्लभ है। अभी इस गाथा में हमने कल गाथा पढ़ी थी तो कहते हैं वहां भी है ना पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, सभी के बादर भी होते हैं। प्रत्येक वनस्पति में सूक्ष्म नहीं होता, सूक्ष्म तो निगोद में होता है, परंतु ये जो चार है अन्य, उसमें कोई बादर है कोई सूक्ष्म है, तो कभी बादर में कभी सूक्ष्म में उनके भी पर्याप्त पर्याप्त ऐसा काल उसने कितना बिताया, तो कहते असंख्यात काल वहां बताया। अकेले सूक्ष्म देखो, लगातार सूक्ष्म पर्याप्त में रहे तो भी अंतर्मूर्त ही रह सकता है जीव, लगातार अपर्याप्त में रहे तो भी अंतर्मूर्त ही होता है, कितने बार वो जन्म मरण करे तो भी, परंतु कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त, कभी पर्याप्त कभी अपर्याप्त काल देखेंगे तो असंख्यात लोक प्रमाण काल बीत जाता है। असंख्यात लोक आप कहेंगे क्षेत्र का प्रमाण है, तो उस क्षेत्र के प्रमाण में जितने प्रदेश है उतने समयों को बताना चाहते हैं। जैसे अंगुल ये भी क्षेत्र है, और उस अंगुल का असंख्यात भाग कितना छोटा होगा, तो उसमें कितने प्रदेश है उसको अगर हम उतने ही समय गिनेंगे, जिसको कहते हमको काल बताना है अंगुल का असंख्यात भाग, तो उसके उसने काल में असंख्याता संख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी चली जाती है, इतना लंबा काल है। एक अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मिलकर कितना काल होता है मालूम है? हाँ, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसे एक दो चार नहीं, केवल असंख्यात भी नहीं, असंख्याता संख्यात।
ये असंख्याता संख्यात क्या होता है मालूम है क्या?
देखो एक होता है परिता संख्यात, एक होता है युक्ता संख्यात, और एक होता है असंख्याता संख्यात, तो वो कितना बड़ा काल हो जाएगा। तो अंगुल के असंख्यात वे भाग में इतना, तो उसके अंगुल में तो उससे असंख्यात गुणा, तो अंगुल तो इतना है और लोक कितना बड़ा है, और ऐसे असंख्यात लोक करो तो कितना काल होगा, फिर भी उसको असंख्यात काल कहेंगे, अनंत काल नहीं कहेंगे। तो इतना काल उसने अन्य एकेंद्रियों में बिताया, अने त्यांथी निकली त्रसपणु पामो। ये त्रस किसको कहते हैं तेजल, आपको पता है? हाँ, दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय उनको त्रस कहते हैं। क्यों कहते हैं उनको त्रस, सुशीला बेन? बहुत अच्छा, त्रस नाम कर्म का उदय पाया जाता है इसलिए इनको त्रस कहते हैं। ऐसा नहीं कि हलन चलन करे वो त्रस, नहीं तो इंडे में जो है पक्षी अभी वंशी, तो उसको भी वो भी हिलन चलन नहीं करता, उसको भी स्थावर मानना पड़ेगा। जो कोमा में है उसको भी स्थावर मानना पड़ेगा। अब जो सोया है 8 घंटे कोई उठने का निशाना नहीं, अभी हलन चलन नहीं होगी, तो उसको भी हम कहना पड़ेगा कि ये स्थावर है, त्रस नहीं है। तो हलन चलन से कोई मतलब नहीं है, परंतु जिसके त्रस नाम कर्म का उदय पाया जाता है उस जीव को त्रस कहते हैं। तो इन एकेंद्रियों में से निकल कर इन्हें वहां ऐसे कोई परिणाम हो जाए कि वो त्रस नाम कर्म बांधे और त्रस में उत्पन्न हो जाए, तो ये भी अत्यंत दुर्लभ है। क्या है ना कि पृथ्वी का आदिमा सूक्ष्म तथा बादर कायो मा असंख्यात काल भ्रमण करे छे, त्याथी निकली त्रसपणो पामु घना कष्टे पण दुर्लभ छे। इन्हें कितना रेयर है वो बात बता रहे हैं। जेम चिंतामणि पामु दुर्लभ छे तेम, कल बात की थी चिंतामणि की, चिंतामणि ऐसा रत्न है कि उसके सामने अपने मन में जो कोई इच्छा उत्पन्न होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। भावार्थ जब ऐसा कहते तो वो चिंतामणि की तो महिमा आती है, परंतु यहाँ त्रस बना पामना और मनुष्य पर्याय प्राप्त होना कितना दुर्लभ है, उस मनुष्य पर्याय की भी दुर्लभता ख्याल में नहीं आती है, और अपने आत्मा की तो आत्मा फात्मा होता होगा, ख्याल है। भावार्थ, पृथ्वी आदि स्थावर काय थी निकली, इसको काय कहते हैं, काय मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद होते हैं जीवों के, लक्ष्मी बेन, काय मार्गणा की अपेक्षा संसारी जीवों के कितने भेद होते हैं, नहीं याद नहीं, हाँ बोलो सुशीला बेन, कहना चाहती है, जय बेन, याद नहीं, बोलो,
हाँ
पांच भेद,
आप कितने बताते हैं, पांच, आप क्या बताते हैं, पांच,
मंदा बेन क्या कहती है,
हाँ।
तो पांच ही है, संसारी जीव पांच ही है,
त्रस को कहाँ छोड़ेंगे, वो संसारी जीवों के भेद करने हैं ना भाई, हमें तो स्वयं कोई भूल गए, हमें तो उस बात की याद आई, हाँ? दस मित्र तैरने गए थे अक्वा बीच पे,
अक्सा,
अच्छा अक्सा बीच पे, तो बोले चलो भाई कितने अपन लोग, सब गिन लो, हाँ दस जने पानी में जाते हैं, पानी के बाहर आए, लाइन में खड़े रहो, चलो गिने, एक दो तीन चार पाँच नौ, अरे दसवा किधर गया, तो दूसरा बोलते तू पागल है, तेरे गिनने को नहीं आते, तो बजट वो उधर जाकर खड़ा हो गया, बोला एक दो तीन चार, अरे नौ कौन गया अपने में से, जो अपने को ही भूलता है, त्रस को भूलता है, वो संसार छोड़ेगा कि रहेगा इधर ही, ख्याल में आया,
तो पांच तो
संसारी जीवों के काय अपेक्षा से अगर हम भेद करते हैं तो कितने होते हैं सुशीला बेन, छह, ख्याल में पांच स्थावर और एक, अच्छा
यानी उसमें स्थावर काय लगा देना उसका, पांच स्थावर काय और एक त्रस काय, तो कहते हैं पृथ्वी आदि स्थावर काय थी निकली, चिंतामणि रत्ननी माफक त्रस पर्याय पाम भी दुर्लभ छे, जैसे चिंतामणि रत्न पाना दुर्लभ है, वैसे ये त्रस पर्याय प्राप्त होना जीव के लिए इतनी दुर्लभ बात है। अब हम प्रवचन पढ़ेंगे,
देखो यहाँ पर लिखते हैं अर्थ नीचे से थर्ड लाइन, पृथ्वी काय आदिमा, यानी ये पांच जो बताए ना, पांच काय स्थावर काय, तो आदिमा स्थूल तथा बादर कायो मा सूक्ष्म तथा बादर कायो मा असंख्य काल भमे छे, यहाँ तो नॉमिनल बताया असंख्य काल, लेकिन वो हमने देखा कितना है, असंख्याता संख्यात, त्याथी निकली त्रसपणु पामवु दुर्लभ छे, यहाँ तो त्रस पर्याय बताई, इसमें सब लेना दो से लेके पंचेंद्रिय तक के, जेम चिंतामणि रत्न दुर्लभ छे तेम हित हित नो निर्णय करी अंदर मा चैतन्य भगवान पनु जागृत करवाना टाणा आव्या छे, यानी ये अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, क्यों कि तुम अभी पंचेंद्रिय हो, तो पंचेंद्रिय की क्या खासियत है, तो कहते हित और अहित का विवेक विचार उसके होता है, इसलिए अपना जो चैतन्य स्वरूप है, ऐसे चैतन्य भगवान पणु जागृत करा, यानी वो पर्याय में धारण करने का समय आ चुका है, तेमा पुरुषार्थ करे तो सुलभ छे, अभी अपने को कौन सा पुरुषार्थ करना है, त्रसपना प्राप्त करने का नहीं, अभी ख्याल में आया ना, ये तो प्राप्त थई गयु छे, अबे टाणा केवा आया छे कि पोताना स्वरूप ने पुरुषार्थ पूर्वक जाणू, आगे આગળ કહે છે ત્રસપણું પામે તો ત્યાં પંચેન્દ્રિયપણું પામવું દુર્લભ છે,
ત્રસમાં તમને દેખે ને, ત્રસમે દ્વિન્દ્રિય તીન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિય પંચેન્દ્રિય, તો દ્વિન્દ્રિય તીન્દ્રિય ચતુરિન્દ્રિય તીનો કો મિલકર એક નામ હૈ, હા વિકલત્રય કહો, તીનો કો લેના હૈ ના, વિકલેન્દ્રિય ભી કહે સકતે હૈ હમ ઉનકો, पर ये तीनों को हम इंक्लूड करते हैं तो विकलत्रय भी कहेंगे उनको। देखो अभी हम गाथा पढ़ेंगे, गाथा में जो दूसरी लाइन में पंचेंद्रिय लिखा है वो न और च लगाए ना तो न नहीं लगाते च के आगे, और पंचई कहाँ किया है वो पंचे चाहिए। देखो च छ ज झ य, य समझते कैसा लिखते है? हाँ, वो ज जैसा ऐसा गोल करके उसके, हाँ हाँ वो ऐसा करो।
अरे ऐसा मत करो,
या चे के ऊपर
निकाल दो, उसकी जगह पम करो और सादा चे करो,
प के ऊपर बिंदी।
हाँ,
सादा च चे,
चे वो चई की जगह चे चाहिए,
पंचे करना। हाँ, पंचई नहीं पंचे।
पूर्व कोटिया बराबर है।
हाँ, एक एक व चाहिए, डबल व नहीं चाहिए, पूर्व कोटिया
व हटा दो।
और कोट यहाँ क्या किया है वो कोट्या चाहिए, क्योंकि कोटी सिंगल वचन है, कोट्या अनेक वचन है।
तो खोड़ो करो,
जैसे नदी नदौ नद्य होता है ना, वैसे कोट्या
खोड़ो, यानी समझते को
मराठी में कहते उसका पाय मोड़ना।
अभी बोलो।
हाँ, देखो अभी गाथा पढ़ेंगे। विकलेन्द्रियेषु जायते तत्रापि आसे पूर्वकोट्यः तेभ्य निःसृत्य कथमपि पञ्चेन्द्रिय भवति। क्या कहते हैं? विकलेन्द्रियेषु जायते, विकलेन्द्रियों में जायते यानी उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, महामुश्किल से एकेंद्रियों में से निकलकर विकलेंद्रियों में जन्म पाता है। तत्र अपि आस्ते पूर्व कोट्या, वहाँ भी कुछ पूर्व कोटि वर्षों तक वो भ्रमण करता है, जन्म मरण करता है। तेभ्य निःसृत्य, और वहाँ से मरकर कथम अपि पंचेंद्रिय भवति। पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। जरूरी नहीं कि सब जो त्रसों में आए हैं उनको पंचेंद्रिय मिले, ये कोई जरूरी नहीं है। एकाद भी बहुत त्रस का करेगी फिर वापस एकेंद्रिय में जा सकता है। द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय में जन्म तो लिया और वापस चले गए अपने पियर में। हाँ, कहाँ पर? निगोद में। अच्छा, देखो इसका ये निःसृत्य का अर्थ समझ में, वहां से निकलकर कथम अपि अनेक किसी तरह से, कथम अपि यानी किसी प्रकार से पंचेंद्रिय होता है, यानी उसकी दुर्लभता यहाँ बतानी है। स्थावर माथी निकली त्रस थाय त्यापण बे इंद्रिय त्रण इंद्रिय चार इंद्रिय रूप विकलत्रय पणाने, विकलत्रय लिखा ना, त्रय यानी तीन, और जिनके इंद्रिय सकल नहीं है, विकल है उसको, विकल ने पूर्ण पांचों इंद्रियां नहीं है, इसके लिए इसको विकल कहते। एक इंद्रियों को अलग निकाला, एक ही है उनके, पंचेंद्रियों को अलग, और ये बीच वाले तीन है, द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय, उसको कहेंगे विकलेन्द्रिय, या तीनों को मिलकर कहेंगे विकलत्रय। तो विकलत्रय पणाने पामे त्या करोड़ों पूर्व रहे छे, कभी द्विन्द्रिय में, कभी तीन्द्रिय में, कभी चतुरिंद्रिय में, कभी उनके पर्याप्त में, कभी अपर्याप्त में, ऐसे करते करते करोड़ों पूर्वों तक वहां रहे। त्याथी निकली पंचेन्द्रियपणों पामू महाकष्ट थी पण दुर्लभ छे, पंचेन्द्रियों के योग्य उस पर्याय मिलने के योग्य परिणाम होना दुर्लभ है। बात भावार्थ, विकलत्रय माथी निकली पंचेन्द्रियपणों पामू दुर्लभ छे, जो विकलत्रय वो वी करना वकलत्रय हुआ ना, उसकी एक वेलांटी क्या कहते इकार करो उसको, व के पहले एक काना करो और उसमें हाँ ई करना, जो विकलत्रय माथी फरी स्थावर कायमा जय उत्पन्न थाय। क्या कहा? पंचेंद्रिय मिले बिना ही विकलत्रय में से यू टर्न करके एकेंद्रिय में चला गया तो त्या फरी घणो काल भोगवे, एटला माटे पंचेन्द्रियपणों पामू अत्यंत दुर्लभ छे। देखो एक बार त्रस में से एकेंद्रिय में चला गया, कोई भी एकेंद्रिय हो, निगोद हो या पृथ्वी का अन्य का ऐसे हो, तो कितने अधिक से अधिक काल तक रह सकता है मालूम है आपको? लक्ष्मीबेन याद है, एकेंद्रिय एक बार त्रस में से एकेंद्रिय में गया तो वहां रहने का अधिक से अधिक लंबा काल कितना है? अरविंद भी आपको याद है? नहीं याद,
इनको याद है।
हाँ, ढाई पुद्गल नहीं, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। इतर निगोद का काल है ढाई पुद्गल परावर्तन। इतर निगोद का अर्थ मालूम है प्रभावेन? हाँ, अन्य पर्याय प्राप्त तो हुई है, नित्य निगोद के बाहर आया है और फिर दोबारा निगोद में चला जाता है तो उसको कहेंगे इतर निगोद। तो कोई जीव ऐसा दोबारा गया है निगोद में, तो लगातार निगोद में रहे 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 तो कितना काल रह सकता है? तो ढाई पुद्गल परावर्तन, जो अनंत अनंत काल है। यह किसकी बात हो रही? सभी एक इंद्रियों में रहने का काल। एक बार त्रस पर्याय मिली है और वहां से एक इंद्रिय में चला गया है तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मैक्सिमम काल की बात है। सभी लोगों को इतना नहीं घूमना पड़ता है, किसी जीव को अधिक से अधिक रहना पड़े तो उसके बाद तो आएगा ही त्रस में। कहते एटला माटे पंचेन्द्रियपणों पामवू अतिशय दुर्लभ छे।
मैक्सिमम त्यां रहे, हाँ,
अकेले निगोद में रहे तो ढाई पुद्गल परावर्तन अड़ी, और निगोद और अन्य एक इंद्रिय पृथ्वी काय वगैरह सब मिलकर बस एक इंद्रिय में रहता है तो सब मिलकर असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। बिल्कुल अनंत काल है, असंख्यात कहाँ और ढाई कहाँ? देखो कभी निगोद में कभी पृथ्वी काय में कभी ऐसा करता रहे तो उसका काल कितना होगा? तो इतना बड़ा हो जाता है।
देखो नित्य निगोद का असंख्यात ऐसा होता है, सुनो,
अकेले निगोद का
नित्य निगोद का अर्थ अनादि काल से जो जीव उसी पर्याय में रहा है वो बड़ा काल रहेगा क्या? असंख्यात वाला अधिक रहेगा अभी नित्य निगोद वाला, तो वहां से निकला फिर अन्य की पर्याय में जाकर फिर दोबारा निगोद में चला गया और वहां निगोद 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 अन्य कोई पर्याय नहीं धारण करे, वो जो कोई काल है वो असंख्यात पुद्गल परावर्तनों का।
निगोद की ढाई पुद्गल
नहीं, निगोद का ढाई पुद्गल परावर्तन और एक इंद्रियों का असंख्यात पुद्गल परावर्तन का,
यानी कभी निगोद में कभी पृथ्वी काय में कभी जल काय में
एक इंद्रिय पर्याय बताए ना,
एक इंद्रिय मेरा
कोई भी हो सकती है,
उसको ऐसा ऐड नहीं कर सकते बस निगोद में इतना पृथ्वी काय में इतना इतना, क्योंकि वो सब असंख्यात है और ये ढाई है तो मिलकर चलो तीन कर दो, ऐसा नहीं चलेगा।
अब बढ़े आगे,
वही तो बता रहे। हाँ, ये सरवाड़ो शू छे अर्थ पढ़ेंगे आप?
देखो यहाँ कह रहे हैं एक इंद्रिय माती निकली त्रस विकलेन्द्रिय था, बे त्रण चार इंद्रिय वाला ने विकलत रहे कहे छे। यानी यहाँ देखो त्रस में सबसे लास्ट पंचेन्द्रिय को लिया और इसमें और एक भेद नहीं किया, असंगी भी होवे तो तकलीफ क्या है? पंचेंद्रिय तो है ना, लेकिन बात ऐसी है जो एकेंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो संगीपना यानी मन जिसके है वो मन के द्वारा ही उपदेश का ग्रहण कर सकता है। और हम जानते हैं कि किसी जीव के सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी है तो उसको पांच लब्धियां होती हैं, उसमें से तीसरे नंबर की लब्धि कौन सी है अमोल, जानते हैं आप? देशना लब्धि। देशना यानी किसी सम्यक दृष्टि या देव की या गुरु की मुनियों की जो उपदेश मिलता है और उसको देशना कहते हैं, तो जो उपदेश मिला है उसको ग्रहण करने की ताकत ज्ञान की संगी पंचेंद्रिय जीवों की होगी और यह हित रूप है, ये बाकी राग द्वेष आदि के परिणाम अहित रूप है। ये जो तारतम्यता है विचारों की वह तो संगी पंचेंद्रियों के ही होती है, इसलिए एक इंद्रिय से लेके असंगी तक के जीवों को आत्मानुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि पांच लब्धियां तो मिनिमम मतलब होनी चाहिए ना उसके ख्याल में। अब क्या कह रहे देखो, देख शायबशम लब्धि संगी पंचेंद्रिय को होगी। हाँ, क्योंकि संगी पने का जो फायदा है ना, वही है हित अहित का जो विचार करने की जो कोई बात है। अब वैसे तो शायबशम लब्धि जो है वह भी वैसी नहीं,
वो तो संगी पंचेंद्रिय के होगी,
संगी पंचेंद्रिय के ही होगी।
यानी जिसको सम्यक तो पूर्व की लब्धि कहते हैं उसकी बात है, वैसे उनके जो क्षोभ समय उसको भी लब्धि कहते हो।
देखो
हाँ, यहाँ कर्णानियोग की अपेक्षा जिसको जितना ज्ञान है उसको उतनी क्षोभ सम लब्धि कहने में आती है, क्योंकि हम कहते हैं ना लब्धि उपयोग भावेन्द्रियम, तो उनकी भी उसको लब्धि कहेंगे, परंतु ये सम्यक तो पूर्व वाली लब्धि नहीं होगी।
यहाँ हमें मूल बात में आगे बताए ना, हित हित नो विचार करी सके।
आपका ऐसा प्रश्न है, वो स्थावर जीव क्या कर सकता है पंचेंद्रिय बनने के लिए, उसका पुरुषार्थ तो कुछ नहीं, आप हम क्या कर सकते बोलो? जो होता है तो अपने आप होता है, परिणामों में विशुद्धता दुर्लभता है कि संक्लेश परिणाम। देखो टोटल जो जीवों के परिणाम है ना, असंख्यात लोक प्रमाण जितने परिणाम है उसमें संक्लेश और विशुद्धि, विशुद्धि यानी मंद परिणाम और संक्लेश यानी तीव्र, तो उसके अगर भेद करेंगे तो जितने हैं उसके असंख्यात भेद कर दो, तो एक भाग अलग निकालो उतने विशुद्ध है, और असंख्यात बहुभाग प्रमाण संक्लेश परिणाम है, तो मेजॉरिटी तो संक्लेश वालों की है, तो मेजॉरिटी तो देखा अभी बताया हमने, अनंत तो निगोद में ही रहते हैं और फिर बाकी पर्याय में असंख्यात है, फिर भी उसमें से निकल कर ऐसे परिणाम होना, ये नहीं कहते कि वहाँ कुछ, वहाँ भी तीन अशुभ लेशा ही चलेगी, परंतु उसमें कुछ मंदता होगी जब आयु का बंद होना है तब। सोच समझकर हमें ऐसा लगता है, हम भी सोच समझकर कुछ करते हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये राग में कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, वो होते हैं सहज यथा योग्य जैसे होने हैं, तो वो होना कितना दुर्लभ है ये बात बताते हैं।
हमें लगता है इस बात की दुर्लभता हमारे ख्याल में आती, पंचेंद्रिय पना प्राप्त होना इतना दुर्लभ है, तभी उसको प्राप्त करने के लिए तो हमें कोई अभी पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी क्या करना है कि मैं ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसा एक्सेप्ट करना है, ऐसी श्रद्धान करनी है, उसके लिए पुरुषार्थ लगेगा। अभी क्या कहते देखो, बे त्रण चार इंद्रिय वाला ने विकलत्रय कहे छे, त्या करोड़ों पूर्व रहे छे। तो ये पूर्व यानी क्या, किसको मालूम है? एक पूर्व यानी कितना, कितने साल होते उसमें? वीरेश भाई, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, बापा आप जानते हैं एक पूर्व में कितने साल होते हैं? स्क्वायर फुट 84? हाँ नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुकना रुकना, मैं जानता हूँ, कौन जानता है वो मैं जानता हूँ। हाँ आप जाने बहन, क्या बोलो, क्या बताया जोर से? 70 लाख, गुजराती में बोला, 56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है, ऐसे करोड़ों पूर्व बताया, एक दो नहीं। ये बात काल कहाँ गया? विकलत्रय में।
आप 84 लाख की बात कर रहे हैं ना, वो 84 करोड़ कहा आपने, 84 लाख का स्क्वायर करो।
हाँ हाँ हाँ,
84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 84 लाख, आपने करोड़ कह दिया, तो उसका उत्तर कितना है? तो ये 70,56,000। हाँ 84 लाख गुना 84 लाख।
देखो ये हम ये सारी पर्यायों में घूम चुके हो, एक इंद्रिय के सभी पर्यायों में, ये विकल इंद्रियों के सभी पर्यायों में, और हमारे भाग ऐसे खुल गए हैं कि हम मनुष्य पर्याय पंचेंद्रिय में आए हैं। इतना ही नहीं, अभी आगे तो वो बताएंगे, लेकिन हम अभी उसकी सोचते हैं कि ऐसा होते हुए भी मनुष्य पर्याय मिला। पंचेंद्रिय कहाँ कहाँ होते हैं जानते हैं? कौन से पंचेंद्रिय कौन से गति में होंगे? मनुष्य में ही ना। हाँ, आप क्या कहते हैं? चारों गति में। हाँ, तिरंज में पंचेंद्रिय होते हैं? कौन होता है? घबरा गई, आप बोलो फिर।
कोई देखा है क्या?
हाँ,
कुत्ता, बिल्ली,
कुत्ता है, बिल्ली,
चिड़िया
है, अरे चूहा है,
बंदर
है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तिरंज में। और नारकी, देखो सुनना, फिर से सुनना, नरक गति का जीव, देव गति का जीव और मनुष्य पर्याप्त जीव, खास करके पर्याप्त, ये सारे पंचेंद्रिय होंगे। अभी वो जो अपर्याप्त वो भी पंचेंद्रिय है, उसकी चिंता नहीं करना। अभी यहाँ मनुष्य पर्याय ले लो पूरी, मनुष्य, क्या नाम है, नारक और देव, इनके तो पंचेंद्रिय होते ही है,
संगी पंचेंद्रिय,
संगी पंचेंद्रिय, वो फिर नीचे वाले कोई नहीं होंगे। लेकिन तिरंजों में एक इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय के सारी वैरायटी है। अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसा मनुष्यपना भी प्राप्त हुआ है, हम अच्छे क्षेत्र में भी जन्मे, आर्य क्षेत्र में, यानी म्लेंछों में नहीं, हमें जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं। और अधिक से अधिक उत्तमोत्तम तो सच्चे देवगुरु शास्त्र का भी हमें पता लगा है। अब हम मानते कि नहीं वो बात जुदी हो, हमें पता लगा है कि इसको सच्चा देव, इसको सच्चा गुरु, इसको सच्चा शास्त्र कहते हैं। आज हमारी वो न्यूयॉर्क वाली बहन आई थी ना, वो हमको बोले आप कभी आने वाले हैं, क्या है ये है वो है, तो हमने बोला ऐसा ऐसा, हमने मना किया है। तो हमें पता दुखी थसू के, मैं दुखी थसू देव कि अभी से लोग पूछने लगे ये कब आने वाले है, हमको वो टाइम हमको छुट्टी के रखने हैं, तो आप कब आएंगे? हमने कहा हम अश्विन भाई को पूछ के बताएंगे। मैं क्या कहता हूँ, देखो जिनको एक दफे इसकी बात पता लगे ना, और खास करके उन्होंने बताया, जो बहन हमको उधर अधिक अपोज करती थी ना, वही पूछ रही है करके। अब आगे मुझे ये कहना है कि सच्चे देव गुरु शास्त्र का भी हमें पता लगना और उनके प्रति हमारा अहोभाव होना और उनके प्रति हम वही सच्चे हैं और यही हमारे काम के हैं ऐसा मानना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ वाली बात हुई है। अभी यहाँ तक तो हम आ चुके हैं भाई, अभी क्या बाकी है? सब कुछ अवेलेबल है ना, उच्च कुल है, निरोगी आयु है, पंचेंद्रिय मजबूत है, ऐसा टेक के बैठने की गरज नहीं। अभी तक कितनी उम्र है तेरी? ये 70 साल की है जवान लड़की, वो बीच में बैठती है, और इसके जैसे बूढ़े लोग टेक के बैठते हैं। अरे क्या बोलना, यानी मैं शरीर रूप हूँ, नहीं नहीं नहीं, कल उठ के जास्ती तकलीफ नहीं हुई है ना, इसके लिए अभी से थोड़ी सी, अरे भगवान हे। कोई बात नहीं, दिन वो भी आएंगे, चिंता नहीं करो। अभी ऊपर ही जाने का है, बैठने का किधर है? देखो देखो, मैं सीधा बात नहीं कर सकता हूँ, जाते जाते थोड़ा थोड़ा चिमटा लेता हूँ। तो हमें ये देखना है कि अभी यहाँ तक हम पहुंचे, ये दुर्लभता की बात चल रही है ना भाई, अभी इससे आगे तो एक ही बस गैप बाकी है कि अपने स्व को मैं ज्ञान स्वभाव ही हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, अनादि अनंत हूँ, बस ऐसा अपने स्वभाव को समझे कि मैं मेरा कार्य अपने से कर सकता हूँ, दूसरे किसी की आवश्यकता नहीं है मेरा कार्य करने के लिए, ना पर मेरा कुछ करता है ना मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ऐसी जब इस जीव की पक्की 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 खातरी हो जाएगी, बस उसका ये मनुष्यपना सफल हो जाएगा। क्या करे अभी, बात तो ऐसी है साहब। यहाँ क्या कह रहे देखो, अभी त्यां करोड़ों पूर्व रहे छे, क्या थी पिकले इंद्रिय मां, अने त्यांथी निकली पंचेंद्रिय पामवू दुर्लभ छे। अभी गाथा 287 बोलो जी।
सपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परम् अपि जानाति, अथ मनसहित भवति सुटं तथा अपि तिर्यक् भवेत् रौद्रः। कहते यहाँ ऊपर बताया था विकलत्रय में से बहुत मुश्किल से उसको पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है। कहते सपि मनसा विहीना, और वह भी मन रहित ऐसा पंचेंद्रियपना प्राप्त होता है। मन रहित यानी असंगी पंचेंद्रिय बन जाता है। पंचेंद्रियों में दो प्रकार है, कोई तो संगी पंचेंद्रिय होते हैं और कोई असंगी पंचेंद्रिय। असंगी पंचेंद्रियों को मन नहीं है परंतु अन्य पांच इंद्रिया है। सुन तो सकते हैं परंतु जो सुनने के बाद वो याद करने का जो प्रोसेस है मेमोरी का, वो नहीं हो सकता। क्यों? उसके लिए मन की आवश्यकता है, उपदेश का ग्रहण। और ये अपने लिए हितकारी है ये अहितकारी है ऐसा विवेक उनके नहीं होता। बस पांचों इंद्रिया है, बस इतनी ही बात। मन के द्वारा जो हम डिराइव करते हैं अपने लिए, हम देखते हैं ना ये प्राणी भी हम जो देख रहे हैं आजू बाजू अपने, जो पेट एनिमल्स वगैरह जो है वो क्या है, सारे संगी है। मन के द्वारा विचार करते, अरे चूहा भी संगी है, ये चिड़िया भी संगी है, घोंसला बनाती है बच्चों का जो रेज करती है, तो उनके वो तो ज्ञान है, उतना हितहित का ज्ञान है उनमें। तो यहाँ कहते देखो संगी पंचेंद्रियों से असंगी पंचेंद्रिय असंख्यात गुणे ज्यादा है। हमें तो एग्जाम्पल नहीं मिलते क्योंकि हमारे आजू बाजू में तो संगी हम ज्यादा देखते हैं, है ना? तो असंगी की जो संख्या है उनसे भी असंख्यात गुणा है। तो यहाँ कहते हैं कि विकलत्रय से मिलकर बहुत मुश्किली से पंचेंद्रियपना प्राप्त हुआ, वह भी मन रहित हुआ। सपि मनसा विहीना, विहीन यानी उससे रहित हुआ, मन से रहित हुआ। तो क्या हुआ? न च आत्मानं परम अपि जानाति, न आत्मा और पर को नहीं जान सकता, क्योंकि ये जो स्व और पर को जानने का भेद करने का जो कार्य है वो मन के द्वारा होगा। उपदेश सुनेगा और वो धारणा में लेगा, फिर उस पर विचार करेगा। ये सारे ही कार्य मन के द्वारा होते हैं, ये इनके पॉसिबल नहीं है। हम कुत्ते को भी नाम रखते हैं और नाम लेके बुलाते, उसको समझता है ये अपने को बुला रहे हैं। तो ये नाम लेकर बुलाना ये भी मन का कार्य है। जो जो एनिमल ट्रेन कर सकते हैं ना, हमने देखते हैं ट्रेंड एनिमल के कितने शो होते हैं ऐसे, उनसे कोई ना कोई कसरत कोई अन्य अन्य एक्शंस करवा लेते हैं, तो ये मन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सारे है वो मन वाले, कोई जैसे तोता है या जो काका कुआ होता है वो जो बोलने को भी सीखता है, जैसे आदमी बोलता है वैसे वो इमिटेशन भी कर सकता है, रिपीट भी कर सकता है, तो वो मन वाले सारे है। तो यहाँ क्या हाँ दृष्टांत आते हैं, कोई विशिष्ट मत्स्य, कोई मत्स्य होते हैं, कोई सर्प होते हैं। हाँ
उसको सरीसृप कहते हैं, कोई सरीसृप यानी पानी में रहने वाले सांप। कुछ मछलियां भी ऐसी होती हैं कि जो मन रहित है, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना कि ये मन वाले
करोड़ पूर्व। असंगी का भी उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व का हो सकता है, हो सकता है। हाँ मनुष्यों में असंगी नहीं होते। तो ये जो पर्याप्त असंगी उनमें भी पर्याप्त पर्याप्त होते हैं, सभी में होते हैं ना, संगी पंचेंद्रिय हो गया, मनुष्य हो, अपर्याप्त जीव तो सभी पर्याय में पाए जाते हैं। परंतु वहाँ जो पर्याप्त है उनकी उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की हो सकती है, जैसे मनुष्य की उत्कृष्ट आयु 1 करोड़ पूर्व की है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश की भी 1 करोड़ पूर्व की है, वैसे असंगी की भी 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती है। मिनिमम कितने भी हो सकते हैं अंतर्मुहूर्त से लेकर। देखो स अपि मनसा विहीनः, ये मन रहित उत्पन्न होता है और ना आत्मा को जानता है ना पर को जानता है। अथ मन सहित भवति स्फुटम्। अब कहते उसमें से कोई मन सहित भी हो जाए महामुश्किली से, तो असंगी में से किसी को संगी पंचेंद्रिय पर्याय भी प्राप्त होवे, तथा अपि तिर्यक भवेत रौद्र। परंतु क्या होता है, रौद्र ने भयानक तिर्यंच हो जाता है, क्रूर परिणामी, जिसको हम हिंस्र श्वापद कहते हैं, बाघ सिंह ऐसे कोई
एनिमल।
अभी अन्य भी देखते हैं ना तिर्यंचों में, तो क्या दूसरे को मारो और खाओ, मारो और खाओ, यही चलता है उनको। तो ऐसे क्रूर परिणामी तिर्यंच हो जाते हैं। तो ऐसे क्रूर परिणामी जो है वो मरकर कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे ना वो। हाँ, तो पंचेंद्री हुआ तो भी क्या हुआ, ऐसा कहते हैं। अर्थ देखते हैं यहाँ पर, विकलत्र माथी निकली पंचेंद्रिय कदी था है। उसकी रेरिटी है ना, दुर्लभता है, तो कदी था है। तो असंगी, ये सर्वत्र 4-5 जगह संगी असंगी जो लिखा है, तो गी दीर्घ चाहिए, दूसरा इकार। तो असंगी मन रहित थाय छे, त्या स्व तथा परनो भेद जानतो नथी, क्योंकि ये भेद जानने का कार्य मन के द्वारा हो सकता है, तो वहां मन ही नहीं है तो ये भेद नहीं जान सकता। कदाचित मन सहित संगीपन थाय, अभी मैं नहीं बताऊंगी, और 4 जगह वो संगी संगी शब्द आने वाला है, तो हर जगह वो दीर्घ करना। कदाचित मन सहित संगीपन थाय तो तिर्यंच थाय छे, अर्थात रौद्र क्रूर परिणामी बिल्ली घुबड़ सर्प सिंह ने मच्छादी थाय छे। देखो विकलत्रय में से कोई मनुष्य तो हो सकता है, पर देव नारकी तो नहीं बन सकता। एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीनिय चतुर्ंद्रिय से मरकर कोई नरक या देव में उत्पन्न नहीं हो सकता, तो नियम से तिर्यंच या मनुष्य में उत्पन्न होगा। तो मनुष्यपना प्राप्त होना दुर्लभ है ना, तो इसलिए पहले तिर्यंच की बात की, वो भी असंगी में उत्पन्न होते हैं, और असंगी में से संगीपना प्राप्त होना दुर्लभ है। हुआ तो भी क्या हुआ, तो क्रूर तिर्यंच बन गया, वही बता रहे हैं। कहां तक आए थे,
रौद्र क्रूर परिणामी बिल्ली घुबड़,
अर्थात रौद्र क्रूर परिणामी बिल्ली घुबड़ सर्प सिंह अने मच्छादी थाय छे। मच्छर को भी क्रूर परिणामी लिया, क्योंकि कितने ही मच्छर मरकर सातवें नरक में जाते हैं ना, महामच्छी की बात है आती है, इसे सातवें नरक में जन्म लेने वाले, सातवें नरक में जाने वाले दो ही है, हाँ, का तो मनुष्य का तो मच्छर। सिंह भी सातवें नरक में नहीं जा सकता। तो क्या कहते हैं, कदाचित पंचेंद्रिय थाय तो असंगी थाय छे, पन संगीपणो दुर्लभ छे। वड़ी संगीपन थाय तो त्या क्रूर तिर्यंच थाय, के जेना परिणाम निरंतर पाप रूप ज रहे छे। दूसरे जीवों को मार कर खाना या उनको सताना आदि जो कोई बातें होती है, तो उनके परिणामों में क्रूरता ही रहती है।
देखो यहाँ पर बिल्ली को भी रौद्र परिणामी कहा, आप देखते होंगे बिल्ली कभी चूहे को पकड़ती है तो इतना जोर से पकड़ती है कि उसके गर्दन में से खून भी निकल आवे, यहाँ तक तो ठीक, लेकिन बिल्ली और सर्प यहाँ दिया है कि नहीं, हाँ सर्प, ये जब ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं उसको भूख लग जाए तो उसी को खा लेते हैं, सर्प क्यों ना हो या बिल्ली क्यों ना हो, है ना। हमको लगता है ये क्रूर परिणामी क्यों है, क्यों हमारे घर का केवल दूध ही पीते हैं ना, ऐसा नहीं है। चलो अब आगे पेज नंबर 4 पर हम आते हैं, अहो आवी दुर्लभता जानी स्व सन्मुख थवानो उपदेश छे मनवाड़ो पंचेंद्रिय पशु थाय तो रौद्र क्रूर परिणामी बिल्ली धुवड़ सर्प सिंह मच्छर आदि मच्छर आदि
मच्छादी कह लो मच्छर तो पंचेंद्रिय नहीं है ना मच्छादी मच्छ है ना वो मछली हाँ
मच्छे ने मासा क्या बोलते फिश ये मच्छर भी क्रूर परिणामी होते आपने काट देना क्यों बेन काट देना यहाँ कोई विशेष लोगों को ही काटते हमको कोई नहीं काटता हाँ वो जानते हैं मच्छर निकाल दो मच्छा करो मच्छादी
करो मच्छरादी है ना वो मच्छादी वो बीच वाला हाँ।
सर्वज्ञनो धर्म तेनु श्रवण ग्रहण धारण अने अनुभवन दुर्लभ छे पहले में पहले सर्वज्ञ ने जो बताया हुआ धर्म उसको प्राप्त करना यह दुर्लभ है कहते उसका सुनना भाग्यशाली हो एना काने आ बात पड़े एम के तो आज दो चार भाग्यशाली नए आए अच्छी बात है ये? हाँ सब अच्छा श्रवण करे ईपन दुर्लभ छे ए श्रवण करे लो जाने ग्रहण करे ए ना ती दुर्लभ छे अने धारण करे एटले मेमोरीज करे अने पाछो अनुभवन करे जे कहेवामां आव्युं छे जिनेन्द्र भगवाने जे वात करी छे एनो अनुभव थवो ए एनाथी दुर्लभ छे एम समझी साचा मार्गनो महिमा लावी सम्यक रत्नत्रय शीघ्र अंगीकार करो एम उपदेश छे चैतन्य हिरलो चिदानंद सुखराशि सिद्ध स्वरूपी शू छे तेनु भान क्रूर पशुओने होतु नथी तेथी ते परम दुर्लभ छे आगळ क्रूर परिणामीओनो नर्कवास थाई छे एम कहे छे पढ़ो तो
देखो ये जरूरी नहीं कि ये क्रूर परिणाम ही होगे क्योंकि हमने देखा है महावीर भगवान के जीव को सिंह की पर्याय में समय दर्शन हुआ परंतु ये तो सामान्य कथन है यहाँ पर
यानी ऐसा कोई रेयरली एकाद तीरंदाज होगा जिसने आत्मानुभव किया उसके कंपैरिजन में अधिकांश तो क्रूर परिणामी ही होंगे दोनों
जनरल स्टेटमेंट है ना वहाँ के जीव क्रूर
समोसरण में भी आते हैं ऐसा
हाँ हाँ समोसरण की वहाँ तो स्पेशलिटी मालूम है आपने कभी चित्र देखा होगा एक ही पानी का पात्र है और एक बाजू से गाय उसमें से पानी पी रही है एक बाजू से बाघ यानी वहाँ तो जो नेचुरल उनका दुश्मनी होती है जिसको जन्मजात वैर कहते हैं तो वहाँ वो नहीं रहता
वहाँ जैसे जिनेंद्र भगवान के पुण्य का ही ऐसा जोर है कि वहाँ एक दूसरे से झगड़ा भी नहीं करते और दिव्य ध्वनि सुनते सुनते आपस में बात भी नहीं करते ऐसा हाँ आपका पूछना है हम शिखर जी गए थे
पीने के लिए
तो शिखर जी जाते जाते बीच में कोका कोला मिलता है वैसा समोचरण में कोई सुविधा है क्या नहीं अरे वहाँ तो भूख प्यास लगती नहीं है हाँ भूख प्यास लगती नहीं ये तो बहन ये तो क्या कहते हैं उदाहरण है सिमिली है यानी जैसा सांप सर्प और नेवला ये तो जन्मजात बेरी होते हैं फिर भी वो साथ साथ में बैठते हैं सांप नेवला सिंह गाय इस तरह लेना
वो तो महिमा बताने के लिए ऐसा वो बताएंगे तो कैसे बता तो। चित्रों में कैसे बताएंगे वहाँ ना कोई पानी पीते है ना कोई कुछ नहीं आहार निहार कुछ नहीं
आहार निहार कुछ नहीं होता है यानी टाइम प्लीज नहीं रहता उधर
मेलों में सब कुछ चलेगा
अब आगे बढ़े
देखो आगे बढ़ते हैं
मच्छर आदि मैं पढ़ रहा था आप पढ़ रही थी
हो गया आपका अभी 288 नंबर की गाथा चली अगर क्रूर परिणामियों ने जिनके क्रूर परिणाम है ऐसे जीवों को नर्कवास थाय छे एम कहे छे, यानी उनको अभी आगामी नर्क में जन्म मिलेगा। सतीव्रा शुभलेश नरके निपतति दुःखदे भीमे तत्रापि दुःखं भुङ्क्ते शरीरं मानसं प्रचुरम्। सह तीव्र अशुभ, तीव्र प्लस अशुभ, तीव्रा लिखा है। तीव्र अशुभ लेश यानी वह तीव्र अशुभ लेशा वाला नरके निपतति नरक में गिरता है, पतति यानी गिरता है और नी उसके आगे लगाया वो उपसर्ग, तो नरक में गिरता है। कैसा है नरक? नरके के लिए और दो विशेषण लिखे हैं, कैसे? दुख दे और भीमे। वहां भीम कहां से आया? भीम यानी भयानक। हाँ, दुख दे, दुख देने, दुख देने वाले ऐसे भयानक नरकों में वो गिरता है, ने वहां जन्म लेता है। तत्रापि दुखम भुंगते, वहां भी दुख भोगता है। कौन से दुख? शरीरम मानसम प्रचुरम, प्रचुर ने अत्यंत अधिक मात्रा में शारीरिक और मानसिक दुख भोगता है। क्या शारीरिक दुख होता है वहां पर? नरक के जो बिल है, तो उत्पन्न कैसे होते हैं नरक में पता है आपको? हाँ, खाली गिरते नहीं है, वो नरक का जो बिल है उसके ऊपर मधुछत्ते के समान उनके उत्पन्न होने के स्थान होते हैं। तो वहां एक अंतर्मूर्त में उनकी बॉडी तैयार होती है और उसमें से भी वो अंदर ऐसे नुकीले ऐसे शस्त्र होते हैं, तो उसमें से करते 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 वो फिर उसमें से नीचे आएंगे। आते तो हाइट में इतने कितने अनेक योजनों के वहां होती है उसकी हाइट, तो जमीन पर जोर से गिरते हैं, तो जमीन पर भी भाले जैसे वो कांटे ऐसे पड़े रहते हैं, तो वहां गिरते हैं तो वेदना तो होती है और फिर उछलते हैं बहुत ऊपर और फिर नीचे टपकते हैं, जैसे बॉल आप जितना टपको जोर से उतना उछलेगा फिर गिरेगा, ऐसे वहां दो चार बार तो ऐसा ऊपर नीचे होगा। ये तो ये कुछ नहीं, तो यहाँ तो जमीन ऐसी है, तो वहां सोचता है चलो अभी नदी दिख रही है अच्छी, उसके अंदर चले जाए तो वहां दुख कम होगा, तो वहां जाता है तो वहां भी वो तो त्रस से भरी हुई है, यानी उसमें भी कृमि है। ये वहां कोई कृमि वगैरह नहीं होती हो, ये अन्य नार की उसका रूप लेते हैं, बिच्छू का रूप लेंगे, कोई सिंह का रूप लेंगे, कोई अन्य किसी का, तो एक दूसरे को तकलीफ देने के लिए, जैसे यहाँ रैगिंग चलता है ना, तो वहां भी एक दूसरे को रैगिंग करते रहते हैं। तो लगता है इसको चलो अभी वृक्ष के नीचे बैठेंगे, तो वृक्ष के नीचे बैठते तो वहां तो असी पत्र यानी तलवार जैसे नुकीले पत्ते वाले वो वृक्ष के ऊपर गिरते हैं और शरीर उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं, परंतु वो टुकड़े होते हैं ये पारे के माफक वो फिर वैकरेक शरीर है, वो तो मरता नहीं जीव, जितनी आयु है पूरी भोगनी ही पड़ती है, मरने का कोई चांस नहीं। जैसे यहाँ कोई ट्रेन के नीचे जाके जान दे देता है, कोई विष भक्षण करता है, कोई पंखे से लटकता है, वहां इसे कोई सहूलियत नहीं है। यहाँ भी ऐसा करने वाले वहां नरक में जाते उनको पता नहीं है, इसलिए करते हैं यहाँ से। हाँ, तो फिर जाते कि अभी गुफाओं में चले जाएंगे, तो गुफा के अंदर चले जाते, वहां तो ऐसे वेदना के लिए अन्य अन्य यंत्र ही बने हुए होते हैं, कोई उसको ऐसे कोलू में पीलते हैं, तो कोई उसमें कढ़ाई में उबालते हैं और कोई उनको कूटते हैं ऐसे, या तप्त ऐसे लोहे के पुतले बनाते हैं और उनको आलिंगन दिया जाता है, ऐसे अनेक दुख वहां भोगते रहते हैं निरंतर। मानसिक दुख भी ऐसा है कि वहां के असुर कुमार जाति के देव वहां चले जाते तीसरे नरक तक, और वहां दो अन्य अन्य नारकियों को उकसाते हैं, इसने तुझे ऐसा किया था या ऐसा किया, उसको मार, उसको ये करे, ऐसे जैसे यहाँ भी हम देखते हैं ना बैलों की झगड़ा करते हैं या कोई वो फाइट कराते हैं ना, बुल फाइट होती है या हेन फाइट होती है,
बैलों की या बकरों की, ऐसे
वो मुर्गों की भी फाइट कराते हैं, मालूम है आपको? नहीं। हाँ, तो ऐसे वहाँ पर नारकियों को आपस में लड़ाते हैं, तो वहाँ शारीरिक और मानसिक अत्यंत दुख भोगते हुए पूरे सागरों की आयु वहाँ बिताता है। यही बात बताते हैं यहाँ पर। क्रूर अर्थ देखते, क्रूर तीर्यंच थाए तो ते तीव्र अशुभ परिणाम थी, अशुभ लेशा सहित मरी, अशुभ लेशाओं में मरकर यानी तीव्र संकलेश परिणामों में मरकर नरक मां पड़े छे। केवू छे नरक? महादुखदायक अने भयानक छे। त्यां शरीर संबंधी तथा मन संबंधी प्रचुर एटले घणा तीव्र आकरा दुख भोगवे छे।
अभी अर्थ देखते हैं। क्रूर पशुओ छे ते तीव्र पाप भाव थी मरीने नरक मां पड़े छे। केवू छे ते नरक? महादुखदायक अने भयानक छे। त्यां शरीर संबंधी शरीर मन संबंधी आखरा दुख अबजो वर्ष भोगवे छे। आप जानते हैं नरक की सबसे कम आयु कितने साल की है? आप जानते हैं नरक की सबसे कम? सुशीला बेन, आप 10,000 वर्ष, ये कौन से नरक की होगी है? और उसमें उत्कृष्ट एक सागर सब एक एक मिनट आप कुछ बोलना चाहते हैं? पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1,000,000 वर्षों की, दूसरे नरक की कौन जानता है? उत्कृष्ट उत्कृष्ट दूसरे नरक की 1 मिनट, पहले नरक की उत्कृष्ट आयु 1,000,000 की है, ऐसे दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3,000,000 है, तीसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 7,000,000 की है, चौथे नरक की उत्कृष्ट आयु 10,000,000 की है, पांचवे नरक की उत्कृष्ट आयु 17,000,000 की है, छठे नरक की उत्कृष्ट आयु 22,000,000 की है, और बाकी सातवें की तो सबको याद है, सब हो क्या है ना। हम तो सब लाइन से गए थे इसलिए हमें सब याद है। सातवें की 33,000,000। यहाँ अब जो कहा तो अपने को लगता है अरे 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 सागर के सामने कुछ नहीं भाई, ख्याल में आया ना। तो क्या कहा, देखो देखो क्या, हाँ साहब क्या आप पूछ रहे हैं? हाँ 1-7, चौथी की 10, पांचवी की 17, छठी की 22, हाँ 10, 77, हाँ 70 सॉरी 22, 77 नहीं, ये गुजराती में गड़बड़ होती है, 22 अने 33। आगे आकरा दुख अबजो वर्ष भोगवे छे, आए मनुष्य थयो त्या मध मांस दारू इंडा कोडलीवर ये हूँ कोडलीवर ऑयल कोडलीवर पेंट हिंसा जू हिंसा झूठ व्यभिचार आदि कुकर्म सेवे ते नरक मा असंख्य वर्ष महापापना फलने भोगवे छे। ये हम छिंदवाड़ा गए थे ना, आपको फोटो दिखाए शायद आपको याद है, हाँ उसमें ऐसे ही दिखाया जो दारू पीने वाला आदमी है उसको वहाँ गरम गरम शीशे के जैसा लोहे का या शीशे का रस बनाते और उसको जबरदस्ती उसके मुंह में डालते हैं, ऐसा बहुत सारे पिक्चर है। ये जो दारू को अपना माउस खाता है उसके कैसे करते हैं, उसको कढ़ाई में उबालते हैं, ऐसा कुछ बहुत अच्छे पिक्चर बनाए उन्होंने। तो क्या कह रहे, देखो कोडलीवर यानी कोडलीवर यानी वो जो मछली का जो ये मिलता है ना कुछ दवा वगैरह वगैरह, जुआनी नी फाट होए लोही चटका भरतू होए तेथी कोई सारी शिखा मन माने नहीं, वड़ी कोई धर्मना वाड़ा मा आवे त्या कुगुरु ना पक्ष मा पड़ी कदाग्रह मा फसाई साचानी निंदा करे आम अनंत प्रकारे सत्य धर्मनी दुर्लभता जानी स्वसन्मुक्तानो उपाय जल्दी करवानो उपदेश थे। ये क्या कहा? कदाग्र में फसाई साचानी निंदा करे। ये अर्थ समझ गई बहन आप? ये सारे तुम लोग कैसे हैं? हठी है। नहीं नहीं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं हमको। आज वो हमारी न्यूयॉर्क वाली बहन आके भी बोलती थी कि ऐसा हम अपने बारे में ऐसा बोलते हैं, तो बोलने दो। साचो धर्म साची शिखामन माने नहीं, शू करे, शू लीधू, बहुत सारू लीधू, जुआ नहीं नहीं फाट होए। अमोल तेरे लिए ही है। लोही चटका भरतु है, क्या बात है स्वामी जी की भाषा तो एकदम चकाचक है, लेकिन ये बच्चे अच्छे हैं। चलो, जावानी के ज्ञान तय सूजे लो कालो सोवाणी मस्तकर्ण मो सदा देत हो।